नमस्कार, स्पोर्ट्स कैन कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, जिसमें हम आपको रूबरू कराते हैं दिन भर की खेल खबरों से। आज की स्पोर्ट्स कैन की एडिशन के साथ मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त सिद्धार्थ सिंह, और तमाम खेल खबरों पर विस्तार से चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो में आ चुके हैं वरिष्ठ खेल पत्रकार गिरीश बोबना। गिरीश, स्पोर्ट्स कैन कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है।
बहुत बहुत धन्यवाद आपका सिद्धार्थ।
सबसे पहले नजर अब तक की स्पोर्ट्स हेडलाइंस पर। पेरिस ओलंपिक खेलों में भारत की रितिका हुड्डा को महिलाओं की 76 किलोग्राम फ्रीस्टाइल स्पर्धा के क्वार्टर फाइनल के कड़े मुकाबले में हार का सामना करना पड़ा, लेकिन रेपेशाज राउंड की उम्मीद अभी भी कायम। गोल्फ में अदिति अशोक और दीक्षा डागर चौथे दौर में चुनौती पेश कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमन सहरावत से बात कर पदक जीतने पर बधाई दी। खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने पेरिस ओलंपिक में कांस्य पदक जीतने वाली भारतीय हॉकी टीम को आज सम्मानित किया, और विनेश फोगाट को फाइनल से पहले डिस्क्वालीफाई होने के बाद रजत पदक पर फैसला अब से कुछ घंटे के भीतर आने की उम्मीद। पेरिस ओलंपिक खेलों में भारत की रितिका हुड्डा को महिलाओं की 76 किलोग्राम फ्रीस्टाइल स्पर्धा के क्वार्टर फाइनल के कड़े मुकाबले में हार का सामना करना पड़ा। उन्हें किर्गिस्तान की शीर्ष वरीयता प्राप्त एपेरी मेडेटकाजी ने हराया।
भारतीय पहलवान रितिका हुड्डा का पेरिस ओलंपिक 2024 में महिलाओं की 76 किलोग्राम फ्रीस्टाइल रेसलिंग में सफर दिलचस्प और चुनौतीपूर्ण रहा। राउंड ऑफ एट में रितिका ने दमदार प्रदर्शन करते हुए अपने प्रतिद्वंदी को 12-2 के एक तरफा स्कोर से हराया, जिससे उनके पदक जीतने की उम्मीदें और भी मजबूत हो गई थी। हालांकि क्वार्टर फाइनल में उनका सामना कजाकिस्तान की एपेरी मेडे से हुआ, जहां मुकाबला बहुत कड़ा रहा। दोनों पहलवानों ने अपनी पूरी ताकत और तकनीक का प्रदर्शन किया। मुकाबला 1-1 के स्कोर पर समाप्त हुआ, लेकिन तकनीकी अंकों के आधार पर एपेरी मेडे को विजेता घोषित किया गया।
ये थी हमारी संवाददाता राश्री, जो पेरिस में मौजूद थी और इस स्पर्धा को कवर कर रही थी। रितिका के कोच वीरेंद्र सिंह ने आकाशवाणी से खास बातचीत में बताया,
इसमें कोई दो राय नहीं है। उसने पहला राउंड जो उम्मीद थी हमारी, उसके मुताबिक बढ़िया खेला। उम्मीद से ही बढ़िया खेला, ये था कि कुछ तो निकाल लेगी, लेकिन इतनी वन साइडेड निकाल लेगी ये उम्मीद नहीं थी। लेकिन वो ट्रेमेंडसली बहुत बढ़िया खेली, उम्मीद से ज्यादा। पूरा चांस है, ये लड़की जो पीरी है किर्गिस्तान से, ये अपनी वर्ल्ड की सिल्वर मेडलिस्ट है और ओलंपिक की भी सिल्वर मेडलिस्ट है। शाम को सेमी है इसका यूएसए के साथ, तो पक्की उम्मीद है ये फाइनल में पहुंचेगी। हमें दोबारा मौका मिलेगा, अब सो हम जरूर ब्रॉन्ज मेडल जीतेंगे।
जी हाँ, कोच बात कर रहे थे दोबारा मौका मिलने की, तो कांस्य पदक के लिए अभी भी रेपेशाज राउंड से उनकी उम्मीद कायम है। और आज रात एपेरी मेडेटकाजी और अमेरिका की कैनेडी ब्लेड्स के बीच होने वाले सेमीफाइनल मुकाबले से ये बात तय होगी। गिरीश, आप इस पूरे टूर्नामेंट पर बहुत ही करीबी नजर बनाए हुए हैं। हालांकि काफी आज उम्मीद लग रही थी कि जिस तरह से रितिका ने प्री क्वार्टर फाइनल में अपने अपोनेंट को हराया, जिसने हंगरी की पहलवान को जिस तरह से पटकनी दी, उसके बाद ऐसा लग रहा था कि क्वार्टर फाइनल में रितिका जीतेंगी, बट बहुत ही क्लोज फाइट हुई, पर थोड़ा सा परिणाम उनके अनुरूप नहीं रहा।
तो 76 किलोग्राम वर्ग भाग में ये पहली भारतीय जो रेसलर है
जी,
और इससे पहले आज तक भारत से कोई भी नहीं गया, इसमें क्वालिफाई नहीं किया। हालांकि अगर आप देखें तो एक साल पहले जो है वो 72 किलोग्राम वर्ग भाग में पार्टिसिपेट करती थी, काफी अच्छा प्रदर्शन करती थी। हालांकि 72 किलोग्राम ओलंपिक्स में है नहीं, तो उन्होंने अपना 4 किलो वजन बढ़ा के 76 में पार्टिसिपेट किया
जी।
और आपको याद होगा, पूरे श्रोताओं को याद होगा कि विनेश फोगाट, जिनको अपना वजन घटाना पड़ा और उसके बाद प्रतियोगिता के दौरान भी जो है वजन 100 ग्राम बढ़ने की वजह से वह समस्या आई। यहां पर समस्या दूसरी है। यहां पर क्या होता है कि एक के बाद एक बाउट्स के बाद आपको अपने वजन को, जैसे अगर फाइनल्स में जाती तो इनको अपने वजन को बढ़ा के रखना पड़ता
जी।
जो हालांकि इस काफी प्रतिस्पर्धा तेज होती है जिससे वजन गिरता है। तो जैसा कि आपने बोला कि हंगरी की बर्नार्ड नैगी को, जो कि 16 दुनिया में 16वीं रैंकिंग है, यूरोपियन चैंपियनशिप में वो जीता है, और वहां पर उन्होंने उनको पछाड़ा। और अगर आप देखें तो जो आज उनका मुकाबला था एपेई मेडेटकाजी से, वो लग रहा था कि वहां पर एक तरफा उनके लिए होगा, लेकिन हालांकि जो एक एक पॉइंट पर मुकाबला बराबरी पर रहा और काजी आखिरी पॉइंट लेने पर कामयाब रही, इस वजह से रितिका को हार का सामना देखना पड़ा।
बिल्कुल, और हमारे साथ पेरिस से महेंद्र सिंह लालस जी जुड़ गए हैं। लालस जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम स्पोर्ट्स कैन में जी। और आप हमारी पूरी एनालिसिस को सुन रहे होंगे, और जहां तक हमने जो अभी बात करी, तो आज का दिन जो अगर हम देखें तो भारतीय खिलाड़ियों के जिस तरह से रितिका का की अभी उम्मीद जिंदा है हमारे पास, और हो सकता है कि रिपिशाज राउंड में कुछ आगे बात बढ़े, और अगर हम देखें तो धीरे धीरे हम ओलंपिक के समापन की ओर बढ़ रहे हैं, और आप चूंकि वहां पर मौजूद हैं, डे वन से लेकर ओपनिंग से लेकर क्लोजिंग सेरेमनी का माहौल है, तो किस तरह से आप इस समय खेल गांव का माहौल है और वहां पे क्या कुछ चल रहा है अभी?
देखिए सिद्धार्थ, जो एथलीट्स हैं होता ये कि बहुत सारे अपने इवेंट खत्म होने के बाद चले जाते हैं
जी,
तो यहाँ पर भारतीय खेमा तो लगभग खाली हो चुका है। आपको ध्यान हो तो हॉकी की टीम हमारी पहुंची थी जी, और उसका वेलकम भी हो गया, खेल मंत्री ने भी उनका स्वागत किया है, तो बहुत सारे एथलीट्स जा चुके हैं, और अब लगभग ये तय है कि हम लोग आधा दर्जन पदक जीत चुके हैं। रितिका का चांस देखिए, अगर रेपेशाज में आती है और ब्रॉन्ज तक पहुंचती है तो वो एक बात की सिचुएशन है। और इसके अलावा गोल्फ में अभी अदिति अशोक और दीक्षा डागर दोनों 20 से नीचे ही चल रही है, तो मुझे लगता है कि उनसे पदक की उम्मीद करना रियलिस्टिक नहीं होगा
जी।
तो बहरहाल आधा दर्जन पदक की तो हम पा चुके हैं, वहीं हम शायद रह जाए। और इसके अलावा एक सिचुएशन और है कि अभी जो आईओए का डिसीजन है जो विनेश को लेकर इन्होंने केस फाइल किया है, और ये जो केस फाइल किया उसमें इन्होंने यही डिमांड की है कि साहब जिस दिन उनका वजन सही था और चूंकि उस दिन को अगर आप माने तो उन्हें रजत दिया जा सकता है, रजत दिया जाना चाहिए, तो वो डिसीजन जो भी होता है तो अगर वो एक पदक रजत अगर करियर सिचुएशन में आ जाता है तो हमारे लिए एक सातवां पदक आ सकता है। लेकिन धीरे धीरे यहाँ पर समापन समारोह की ओर बढ़ रहा है, और पेरिस ने एक बहुत अच्छा खेल आयोजन किया, बहुत माहौल अच्छा रहा, दुनिया भर के फैंस यहाँ पर आए, भारत के फैंस दुनिया भर से यहाँ पर आए, खासतौर पे हॉकी के मैचेस में, बैडमिंटन के मैचेस में आपने खूब सारे तिरंगे देखे होंगे
जी, बिल्कुल,
बहुत सारे फैंस यहाँ पर। दरअसल यूरोप में आपस में इंटरकनेक्टिविटी है, तो बहुत सारे भारतीय जो यूरोप में दूसरी जगह पे भी रहते हैं जैसे यूके में या बेल्जियम में या जर्मनी में, वे लोग भी बहुत बड़ी संख्या में आए, और टिकट्स बिल्कुल फुल थे, हॉकी सब जगह आप देखें तो स्टेडियम भरे हुए थे, और भारतीय प्रशंसक भारी तादाद में आए।
बिल्कुल, तो महेंद्र आप हमारे साथ जुड़े रहिए,
उन्होंने बहुत सपोर्ट
जी,
किया
जी बिल्कुल, और काफी आपके जो अपडेट्स हैं हम देख रहे हैं, लगातार आप वहां से हमें अपडेट करते हैं। कल रात में भी अमन सहरावत का जब उन्होंने कांस्य पदक जीतकर देश का दिल जीता, आपने सबसे पहले वहां पे सारी वहां का जो माहौल था वो हमें भेजा, और आइए सुनते हैं अमन की इस जीत पर स्पोर्ट्स डेस्क की खास रिपोर्ट।
अगर आसान होता तो हर कोई कर लेता। जी हाँ, ये वो शब्द हैं जो दिल्ली के छत्रसाल स्टेडियम के हॉस्टल के कमरे में किसी खिलाड़ी ने लिखकर लगाए हैं। किसे पता था कि इस शब्द के मायने इतने गहरे हैं? क्योंकि जो आसान था उसे पाने की चाह कहाँ थी, जिद तो थी कुछ कर दिखाने की, देश का नाम रोशन करने की। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं अमन सहरावत की, जो मात्र 21 साल 24 दिन की उम्र में भारत के सबसे युवा ओलंपिक मेडलिस्ट बन गए हैं। कल रात अमन ने पेरिस ओलंपिक्स में भारत को कुश्ती का पहला पदक दिलाया। इसके साथ ही अमन ने भारतीय रेसलर्स की उस विरासत को आगे बढ़ाया जिसकी नींव सन 1952 में केडी जाधव ने कांस्य जीत कर रखी थी। भारतीय रेसलर्स ने लगातार 5वें ओलंपिक खेलों में मेडल जीता है। अमन ने ये जीत जोरदार अटैक और स्टेमिना से हासिल की। अमन ने फ्री स्टाइल 57 कैटेगरी में प्यूटो रिको के डरियन टॉय क्रूज को 13-5 से हराया। अमन ने पीवी सिंधु के रिकॉर्ड को भी तोड़ दिया और वो भारत के सबसे कम उम्र के ओलंपिक पदक विजेता बन गए हैं। हरियाणा के गांव बिरोह से पेरिस में देश की शान बढ़ाने वाले अमन की राह आसान नहीं थी। अमन ने 10 साल की उम्र में अपने माता पिता को खो दिया, लेकिन उन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा, और पेरिस ओलंपिक में पदक जीतने के बाद अमन ने अपने माता पिता को समर्पित किया। हम अमन से यही कहेंगे, सुनिए जरा अमन ने जीत के बाद क्या कहा।
इस उपलब्धि को मतलब बहुत अच्छे देख रहे हैं, आगे जाके और अच्छा करेंगे, इससे भी 2028 के में इससे भी बढ़िया मेडल का रंग बदलेंगे। इन स्कीम से टॉप साई और WFI ने भी बहुत मदद करी, तो मतलब इनसे बहुत फायदा मिले।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमन से बात कर देश का नाम रोशन करने के लिए उन्हें बधाई दी।
अमन आपको बहुत बहुत बधाई, आपके उज्जवल भविष्य के लिए भी अनेक अनेक शुभकामनाएं।
धन्यवाद सर जी।
आपने अपने नाम के अनुसार सारे देश का मन भर दिया है।
प्राची प्रिया, स्पोर्ट्स कैन।
जी हाँ, तो सरकशी का जो परचम है वो तो अमन ने लहरा दिया है वहाँ पेरिस में।
बहुत आपको मैं विशेषतः जो है यहाँ बधाई देना चाहूंगा कि आपने बहुत अच्छी उम्दा रिपोर्ट लिखी और उस रिपोर्ट में आपने सब कुछ उसमें आपने समा दिया। अब मेरे पास कहने को ज्यादा नहीं है, लेकिन हालांकि जो एक यंगेस्ट मेडल की बात बताई कि पीवी सिंधु का रिकॉर्ड तोड़ा और फिर किस तरह से एक पारिवारिक जो परिस्थितियां थी, एक बहुत ही कम आयु में माता पिता का साथ छूट गया, लेकिन यहां पर रवि दहिया जो हमारे टोक्यो ओलंपिक के सिल्वर मेडलिस्ट हैं, उनको कॉपी करने के बाद एक तरह से एकलव्य वाली जो भूमिका थी वो यहां पर करके, और वो इकलौते हमारे रेसलर, तो अमन की आशा ये काफी अच्छा रहा। सिद्धार्थ मतलब हमारा एक लौता रेसलर गया, वो भी ब्रॉन्ज मेडल लेके आ रहे हैं वो।
जी बिल्कुल गिरीश। और खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने पेरिस ओलंपिक में कांस्य पदक जीतने वाली भारतीय हॉकी टीम को आज सम्मानित करते हुए उनकी दृढ़ता और अदम्य जज्बे की सराहना की है।
भारत की हॉकी टीम से मेरा मिलना हुआ, सभी प्लेयर को शुभेच्छा दी गई, देश गौरव महसूस कर रहे हैं और आने वाले दिनों में और अच्छी सफलता के लिए हम सभी को शुभकामना भी देते हैं।
पेरिस ओलंपिक में भारतीय हॉकी के शानदार सफर पर ओलंपिक डेस्क से प्रत्युष घोष की रिपोर्ट के साथ हैं वत्सा विलियम्स।
With a bronze medal around their neck, the Indian hockey team wrapped up their campaign with a sense of satisfaction. But Indian hockey coach Craig Fultron said, India deserves to win gold, but the way they came out from a difficult situation, especially against Spain, and won the medal is something different. Truly, Harmanpreet and his men displayed a lot of character in the key matches against Australia and Great Britain. Against the last one, India had to play with 10 men for almost three quarters. It was a game which was played at breakneck speed on a wet artificial turf. Despite that, the men in blue eked out an impossible victory. Skipper Harmanpreet led from the front and emerged as the highest scorer with 10 goals. Goalkeeper P.R. Srijesh, a veteran of many battles, had kept the team afloat with a number of brilliant saves throughout the crucial encounters. Needless to say, this was the dream outing of the Indian hockey team that left a permanent glittering impression in the minds of Indian sports lovers. With Pratyush Ghosh, this is Valsa Williams for Sports Scan.
जी हाँ, हॉकी में तो टीम इंडिया ने चकदे कर दिया है और जिस तरह से गिरीश उन्होंने प्रदर्शन किया, हालांकि हमें कांस्य पदक मिला लेकिन उनके जज्बे को पूरे स्पोर्ट्स स्कैन की टीम का सलाम है।
बिल्कुल, पूरे स्पोर्ट्स स्कैन और पूरे भारत का सलाम है उनको। लगातार दो ओलंपिक्स में उन्होंने ब्रॉन्ज जीतकर एक पोडियम फिनिश की है। सबसे अगर हमारे श्रोताओं को मैं याद लाऊं, 2008 का वो एक काला अध्याय जहां पर हम ओलंपिक्स में हॉकी टीम हमारी क्वालिफाई नहीं कर पाई थी, और उसके बाद ये हॉकी का खेल जिसने एक वेन वी वर किंग्स जब एक गोल्डन एरा होता था, अब वापस उस दौर में भारतीय टीम है। और हालांकि अब भारतीय टीम के पास एक और चुनौती है सिद्धार्थ, अब तो हम जीत गए, आने के बाद अगले चार साल के लिए अब उनको एक नई टीम बनानी पड़ेगी। कई खिलाड़ी इसमें से अब जो इस टीम का हिस्सा नहीं होंगे, युवा टीम होगी। और सबसे अच्छी बात है कि हमारे पास जूनियर वर्ल्ड कप है और फिर अब लीग भी स्टार्ट होने वाली है, हॉकी इंडिया अपनी लीग स्टार्ट करेगी, तो इस लिहाज से एक और बड़ा पूल आएगा। और सृजेश जिन्होंने एक स्वर्णिम अक्षर भी लिखा, और आप ये देखें कि कम से कम 350 से ज्यादा मैचेस, 336 मैच खेलने के बाद इतना बड़ा, और उसके बाद मनप्रीत सिंह 378 मैच, तो काफी बहुत ही बेहतरीन रहा है।
बिल्कुल श्रोताओं, समय हो चला आपसे विदा लेने का, कल फिर मिलेंगे कुछ और ताजा खेल खबरों के साथ। गिरीश, आप हमारे स्टूडियो में और तमाम खेल खबरों पर हमसे चर्चा की, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आभार। साथ ही हम धन्यवाद करते हैं पेरिस में मौजूद आकाशवाणी की ओलंपिक टीम का, जो पल पल की अपडेट्स हमारे श्रोताओं तक पहुंचा रहे हैं। इसी के साथ अनुमति दीजिए स्पोर्ट्स कैन की पूरी टीम और मुझे यानी सिद्धार्थ सिंह को नमस्कार, शुभरात्रि।